जो मेरे पास जो किताब है वो ऑलमोस्ट वो 55 और उसके पेजेस में है, क्योंकि नासिर बलागा के सेशन में आप लोग रहे हैं और तो नासिर बलागा से तो आप लोग वाकिफ हैं, और लेकिन शहीद मुतहरी कुछ जुमले कहते हैं कि वो सुनेंगे। 55 में कहते हैं, नासिर बलागा कैसी किताब है, इसमें आपको हर किस्म का अंसुर मिलता है। जब इंसान नासिर बलागा का मुताला करता है तो एक मकाम पर ख्याल करता है कि बू अली सीना कुछ कह रहा है, क्योंकि बू अली सीना की फिक्र एक खास फिक्र है। देखें, दूसरी जगह वो समझता है मौलवी मानवी, मौलवी यानी जो मसनवी है मौलाना की, मौलाना रूमी, और उनकी मानवी या मुदीन अरबी गुफ्तगू है, वो रफा का बाबा कहा जाता है, मुदीन अरबी, जिनका मजार शाम में। फिर जब मुताया करते हुए एक जगह पहुंचता है तो उसे यूं महसूस होता है फिरदौसी कुछ कह रहा है, या आजादी का मतवाला बोल रहा है, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जैसे चिगुआरा था, जैसे नेल्सन मंडेला रहा है, जैसे मसलन अगर दुनिया में मिसालें दे दे तो पेड्रो कास्ट्रो है, मार्टर लूटर वगैरह, किंग वगैरह हैं, तो जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनकी बात है। पाकिस्तान की अगर बरसगीर की मिसालें दें तो महात्मा गांधी हैं, कायद आजम वगैरह हैं, लगता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं कहें, पर जो है ना आज़ादी के मतवाला बोल रहा है, जैसे आज़ादी के अलावा कुछ भी नहीं सोचता वो सिर्फ। अच्छा, ये मुख्तलिफ मिसालें क्यों दी हैं शहीद मुतहरी ने, देखें क्योंकि बू अली सीना एक खास वादी में माहिर था, तमाम वादियों का और तमाम सेक्शंस का कोई एक कंप्लीट मजमुआ नहीं था बू अली सीना, कि हम हर एग्जाम्पल बू अली सीना से नहीं दे सकते, ये बहुत डीप एक चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हम हर चीज का मजमुआ बू अली सीना को नहीं समझ सकते, या मौलाना रूमी को नहीं समझ सकते, या मोहिद्दीन अरबी इरफान की वादी में, लेकिन इनकलाबी इकदाम क्या किया मोहिद्दीन अरबी ने, कुछ नहीं। माशरे में तब्दीली लाने के लिए, निजाम में बेहतरी पैदा करने के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। अबू अली सीना इल्म तिब में उस वक्त महारत रखता था, फलसफा और क्या कहते हैं इस्लामी उलूम और इनमें महारत रखता था, लेकिन अबू अली सीना क्या कोई बहुत जबरदस्त किस्म का लीडर था, कायद था, कोई राहबर था, रहनुमाई की, उसने इनकलाब बरपा कर दिया, माशरे में तब्दीली ईजाद की, नहीं कुछ भी नहीं। इल्मी कुछ सेक्टर्स के अंदर, वो भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, न कि हर सेक्टर में। इसी तरह मौलवी मानवी भी एक सूफी एक आरिफ था, मोहिद्दीन अरबी इसी तरह है, या फ्रीडम फाइटर है, वो एक अच्छा आजादी देता है, लेकिन आजादी को लेकर जो है बहुत कुछ देता है, लेकिन क्या वो एक दशवा है, क्या वो हमें एक जबरदस्त किस्म का एजुकेशनल निजाम दे सकता है। कायदे आजम ने दिया है हमें कोई जबरदस्त किस्म का एजुकेशन निजाम, नहीं दिया। आलम इकबाल एक बहुत बड़ा दानिश्वर था, बेदारी की तहरीक में बहुत बड़ा उसका रोल है, लेकिन क्या आलम इकबाल ने हमें कंप्लीट कोई सिलेबस बना के दिया है, अलाम इकबाल ने हमारे समाज का कोई सिस्टम डिजाइन करके दिया सोशियोलॉजी के अंदर, नहीं। इसी तरह यानी अब ये बात जो है इस तरह गहरी आई है, और आप लोग पिछले कई अरसे से मुसलसल हैं, तो अब कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं डीप किस्म की जो आमतौर पे अवॉइड करते की जाती हैं पब्लिक उसके अंदर, वो अब हो सकती हैं आपसे। मसलन मैं एग्जाम्पल देता हूँ खुद शहीद मुतहरी की। खुद शहीद मुतहरी इतने बड़े आलिम, दानिश्वर, एक मुबारिज, एक इनकलाबी शख्सियत, जिनके अंदर बहुत सारी सिफात मौजूद थी, लेकिन सवाल ये है शहीद मुतहरी जो इतना हाई लेवल का थिंकर दानिश्वर था, वो कोई ऐसा जबरदस्त सिस्टम नहीं दिया हमें, वो देने शायद जिंदा रहते और शहादत ना होती तो रहते उनके, क्योंकि अब चुका था इनकलाब आने के बाद, तो इनकलाब आने के बहुत ही थोड़े अरसे में शहादत हो गई उनकी, तो शायद अगर जिंदगी साथ देती तो शायद वो एक जबरदस्त होजे का निजाम बना के देते, स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट और पीएचडी लेवल की एक सिस्टम बना के दे देता, और इसी तरह सोशल सिस्टम बना देता, मुमकिन है। बहुत सारी चीजों में वो महारत रखते थे और खुदा ताला ने उनको सलाहियतें दी थी, लेकिन नहीं दे सका। उनकी किताबों से निकाल सकते हैं चीजें, लेकिन वो एक कंप्लीट चीज नहीं होती है, जैसे जो है एक सिस्टम, एक पूरा डिजाइन शुदा चीज नहीं है। तो मतलब शहीद मुतहरी ये क्या कहना चाहते हैं, कहते देखें आपको नाजुक बलागा एक मुकम्मल किताब मिलेगी, मसलन बू अली सीना यहाँ मिलेगा, मौलाना रूमी मिलेंगे, मोहिद्दीन अरबी यहाँ मिलेंगे, फिर फिरदौसी मिलेंगे, फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पर मिलेगी, आजादी जिसको चाहिए वो भी नाहिबलागा में आ सकता है, रूहानियत मानवियत नाहिबलागा में, सियासत नाहिबलागा में, इक्तसादियात, यानी नाहजुल बलागा एक ऐसे ओशन का नाम है जिसमें ये सारी चीजें, कोई आदमी नहीं कह सकता मेरे लिए तो नाहजुल बलागा में कुछ नहीं था जी, एक डॉक्टर नहीं कह सकता है मेरे लिए क्या मिलेगा, एक इंजीनियर ने कहा कि नाहजुल बलागा, सईद रजी, मैंने पहले बहुत दफा बात की है नाहजुल बलागा के दर्स में, ये कंप्लीट नाहजुल बलागा नहीं है, जो नाहजुल बलागा ओरिजिनल अभी आई है कंप्लीट मौला अली इस्लाम के खुतबों की, वो तो 9-10 जिल्दों पर आ गई है अभी, उसको शॉर्ट किया है किसी ने, मतलब मोटी करके किया है, तो भी 7-8 जिल्दें बन गई हैं उसकी, तो बहुत सी चीजें यहाँ मिसिंग हैं ना। अब इससे नाहजुल बलागा की अहमियत और इफादियत हमें समझ में आती है, और इससे एक स्टेज आगे जाएंगे तो जो इसके अंदर से पैगाम निकलता है वो कुरान मजीद है। अब कुरान मजीद के अंदर परवरदिगारा क्या होगा, क्योंकि नाहजुल बलागा को हम कह सकते हैं कुरान मजीद की एक तफसीर है, लेकिन कुरान मजीद खुद फिर क्या है, खुद इसकी तरह अलैहिस्सलाम को समझना चाहे तो यहां से समझ सकते, हमारी सदी में ऐसा कोई परफेक्ट शख्सियत मासूम के अलावा नहीं गुजरी है, अगर हम किसी को एक हद तक परफेक्ट कह सकते हैं तो इमाम खुमैनी की ज़ात है, शहीद आयतुल्ला बाकर सदर इल्मी फिक्री मैदानों में परफेक्ट थे, मुबारजे में भी परफेक्ट थे, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में परफेक्ट नहीं थे, और जबकि इमाम खुमैनी हम देखते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, पॉलिटिक्स से लेकर, घर से लेकर, बाहर से लेकर, बहुत हद तक, इसीलिए जो कहा जाता है कि इमाम खुमैनी एक सच्चा पैरो था, वाकई हकीकत में हमें नजर आता है, इमाम खुमैनी के बाद भी बहुत सारी शख्सियात नजर आती हैं, लेकिन रहबर जो है इमाम खुमैनी की परतों कहते हैं, इसीलिए तजल्ली है इमाम खुमैनी की, एक तरह से उनके अंदर ये चीजें हमें बतौर कामिल नजर आती हैं, इस वक्त जमीन में हमारी जो जमीन है इसमें बड़ी बुजुर्ग शख्सियात मौजूद हैं, यानी इमाम मासूम को छोड़कर बड़ी बुजुर्ग शख्सियात मौजूद हैं हर जगह, लेकिन वो हर एक अपनी एक वादी में माहिर हैं या उनकी एक एक्सपर्टीज है, लेकिन अगर हम किसी को कहें जी कि मोस्टली सेक्टर्स के ऊपर महारत रखते हैं तो वो रहबर हैं, और ये ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आप मैं एक दिन म्यूजिक और मौसीकी के ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ रहा था कि भाई म्यूजिकी है क्या, पहले मैंने उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी कि म्यूजिक है क्या, किस तरह की, कितनी किस्में हैं, क्या है, मैं हैरान हो गया, अचानक मुझे एक ऐसी स्पीच मिल गई रहबर की जो म्यूजिशियंस से उन्होंने ईरान में की थी, और मुझे लगा कि रहबर सबसे बड़े म्यूजिक एक्सपर्ट हैं, और एक खुद ऐसे शख्स हैं कि जो म्यूजिशियन टाइप के बंदे हैं, यानी खुद उसकी सेक्शन सेक्शन कितनी किस्म की मौसीकियां हैं, ब्रांचेस क्या हैं, कौन सी मौसीकी कहाँ बेहतर नजर आती है, कौन सी मौसीकी के क्या असरात पड़ते हैं, मैं हैरान हो गया, परवरदिगारा मैंने कहा कि ये म्यूजिक के अंदर मुश्तहिद है, इस मसले में भी मुश्तहिद है, जिस मसले के ऊपर गुफ्तगू करते हैं हैरान होता है, इंसानी अकल है हो जाती है कि परवरदिगारा ये क्या, देखें इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा मुतालिया करते हैं, स्टडीज बहुत ज्यादा करते हैं, बैठते हैं तो वो बाज राइटर्स हैं ईरान में जो नावल लिखते हैं, रोमान जिसको कहते हैं फारसी में, नावल्स वगैरह लिखते हैं, तो उनके साथ बैठते हुए एक जो नावल निगार था वो, उसने आके कुछ बातें की, तो उस नावल निगार से मुखातब होकर रहमान ने कहा देखो इनकलाब से पहले भी तुम जो तुम्हारी नावलें थी ना वो इतनी मैयारी नहीं थी, अभी जो तुम्हारी नावलें हैं वो बहुत स्टैंडर्ड आ गया, देखिए ये इनकलाब की बरकत है, तुम्हारी जो फला नावल है, फला नावल है, फला, वो नावल निगार कहता मैं खुद हैरान हो गया, मैं खुद भूल चुका था कि जो मैंने नावलें लिखी थी पुरानी मैं भूल गया था, बराबर मुझे बता रहे नाम के साथ, तो फला नावल के, नावल के फला जगह पे तुमने ये जो लिखा है इससे ये असर वो होंगे, ये मैं है, कहता मैं दंग हो गया, मैंने कहा खुदा है मैं लिखारी इस किताब का मुअल्लिफ, मैं खुद अपनी किताबों को आप पहचानवाने के लिए मुझे जाके मुताले करना पड़ेगा, कहता राबर ये सारी चीजें जानते हैं, वो भी बाय द वे उससे बात हुई है, बहुत सारे वल्गार थे, जनरल बातचीत हो रही थी, उसने कोई ऐसी बात की तो रहबर ने फिर उसको मुखातब किया, शायरों के हवाले से इसी तरह है, बाद शायर जो बैठे हुए थे उनके बारे में गुफ्तगू की, और वो शायर कहते हैं हम तो दंग हो गए और हमने वहां से सीख के उठे, तो वाकई यानी लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, मसलन शहीद कहते हैं देखें एक जगह निगाह डालता है नाहजुल बलागा में तो इंसान ख्याल करता है कि एक आबिद शब जिंदादार गुफ्तगू कर रहा है, या एक गोशनशीन जाहिद या राहिब कुछ कह रहा है, खानकाह में बैठा हुआ है, जो जो अपने अंदर तमाम इंसानी कदरें रखते हैं। हर बोलने वाले का कलाम उसकी रूह का नुमाइंदा होता है। पस नाजुल बलागा आप देखें इमाम अली कितने अजीम और हम कितने कोहता है। तकरीबन 50 साल पहले जब दीनी और मजहबी मसाइल में हमारा माशरा फकत जोहद और इबादत की कदरों की जानिब मिलान रखता था, यानी तवज्जो रखता था, ये मिलान बहुत ही कदीम उर्दू है, इस वक्त आप कहें भी जाते तो देखते कि एक वाइस मेंबर पर बैठता और नाजुल बलागा से पढ़कर सुनाता था। वो क्या पढ़ता था? सुन की खुतबे बिलुमूम पढ़े जाते हैं, उनकी तादाद मजमू तौर पर 10 से 20 तक थी। ये नाजुल बलागा के वो खुतबे थे जिनका ताल्लुक ज़ोहद और मौईज़े से था, ये अलबत्ता ईरान में। यानी मसलन, ए लोगो, ये दुनिया गुजरगाह है, आखरत जाए करार, इस राहगुजर से अपने लिए तोशा उठा लो, जिसके सामने तुम्हारा कोई भेद छुपा नहीं रह सकता, उसके सामने इस किस्म के खुतबे पढ़ा करते थे, या ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नाजुल बलागा के दीगर खुतबे नहीं पढ़े जाते थे क्योंकि माशरा उन्हें जज्ब और कबूल नहीं कर सकता था, सोसाइटी में कैपेसिटी नहीं थी। अभी भी बहुत से टॉपिक्स को आप देखें, हम साउथ एशियन हम मुनाजरे से नीचे उतर ही नहीं सकते। कितने लोग हैं जो इस किस्म की, जो आप लोग मौजूदात इंतखाब करती हैं, कितनी खवातीन हैं जो इस तरफ तवज्जो रखती हैं, उनको वही चाहिए, वो क्या कहते हैं, 5 औरतों की कहानियां, मौजजे, उस तरह झूठे किस्म, उसी से मैं खुश है, उसी को उन्होंने दीन समझा हुआ है, उसी को दुनिया समझी हुई, उसी को सब कुछ समझा हुआ है। वो जाते हैं जाके अलम को छू के आए तो समझते हैं बस, तो हमारा तो सारा कुछ हो गया, मामला हल हो गया, बस इमाम राजी जान बहस भी हमें गई, दुनिया में भी हम खुश हैं। मेंटेलिटी लेवल ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको यानी ऑब्जर्व करे या अपने अंदर जो है ना क्या कहते हैं जज्ब कर ले और एक्सेप्ट कर ले, ये लेवल ही नहीं है। उस वक्त भी कह रहे हैं कि नहीं था क्योंकि समाज उन्हें जज्ब और कबूल नहीं कर सकता था। इस माशरे ने कुछ दूसरी कदरों की जानिब मैलान पैदा कर लिया, लिहाजा नाजुल बलागा उन इशू का पढ़ना मामूल बन गया जो कदरों के बारे में थे। इसलिए आप देखते हैं अक्सर उलमा प्रेफर करते हैं मुनाजरती बातें करने। आप देखते हैं यूट्यूब में जाएं आप या sharetv.net में जाएं, sharetv में तो चलो बेहतरी है फिर भी क्योंकि वो पीछे एक अच्छे लोग उसको चला रहे होते हैं, यूट्यूब और फेसबुक और इन पे देखें कौन सी वीडियोस को हाईलाइट करते हैं, फला वो उसने कहा, एक क्लिप उसमें डाल दिया है, सारी मुनाजरती बातें होती हैं, कोई तरबियत की, कोई फिक्र, कोई सोच। ये 2-4 उलमा अभी इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, गर्ची अपनी एजुकेशन ज्यादा कंप्लीट करने से पहले मैदान में उतरे हैं और माशाल्लाह से उनकी पजीराई भी बहुत अच्छी हो रही है बहुत बड़े हलके में, तो उनके मौजूदात जरा मुख्तलिफ हैं, मगर ना आप देखें सब यही है। फिर कह रहे हैं इसी तरह 100 साल गुजरने को आ गए लेकिन इस तवील मुद्दत में शायद एक भी शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मालिक अश्तर के नाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का फरमान पढ़ता मेंबर से, जो कि इज्तिमाही और सियासी अहकाम का एक खजाना है। इसकी वजह यह थी कि दर हकीकत इस माशरे की रूह इन चीजों की ख्वाहिश और शौक नहीं रखती थी। आज भी बहुत से लोग आप यकीन करें, हमें कोई मुझे मैं आपको साफ बात बता दूं, हमें कोई अनजान जगह से कोई अनजान आदमी हमें कॉल करता है मजलिस के लिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कहता हूँ आप मेरे बारे में जानते हैं, आपने कोई मजलिस मेरी सुनी है, पहले आपने मालूम किया है, क्योंकि ऐसा होता है बाज़ अहम मुनासिबतों में कोई आलिम दीन मिलता नहीं है, कोई खतीब मिलता नहीं है, तो फिर ढूंढना शुरू करते हैं हम जैसे लोगों को कि आपने सुना है, ऐसा ना हो कि आप बेचारे मायूस हो जाएं, मैं आ जाऊं आपने कहा कि वहां कोई ऐसी काम नहीं किया कि हाथ फाड़ने के नारे लगते हूं, न कोई इस तरह की बात की, ना कोई तबर्रा किया, न कोई और बात की, तो आपको फिर एक मायूसी हो जाएगी। तो आप पहले मालूम करें कि मैं किस तरह की मजलिस पढ़ता हूँ, किस तरह की बातें करता हूँ, फिर आपको एक्सेप्ट है तो मैं आ जाता हूँ, वगैरह मैं नहीं चाहता कि आपको धोखे में रखूं। तो ये मसाइल इस वक्त भी हमारे पास मौजूद हैं जिसकी तरफ शहीद मुतहरी ने उस वक्त के समाज की बात की है। अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं वो एंड पे हमें जाके पता चलेगा। कह रहे 50 साल बिस्तर का इस्लामी माशरा इस जुमले की रूह और उस बात की गहराई तक नहीं पहुंच सकता था। किस जुमले की रूह? जो कि पहले फरमा रहे हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मौकों पर फरमाते हुए सुना कि इस कौम में पाकीजगी नहीं आ सकती जिसमें कमजोरों को खुलकर ताकतवरों से हक नहीं दिलाया जाता। अब देखें ये आज हमारे माशरे की दर्द है, ये इन्हें कमजोर खुलकर ताकतवरों से हक जो है न ले सकें, न दिलाया जा सके, तो फिर उस समय कहता है 50 साल पहले अगर ये बात कोई भी नहीं पहुंच सकता था। इस्लाम ने फरमाया कोई उम्मत पाकिजगी और तहारत और ऐब से मुबर्रा होने के मकाम तक नहीं पहुंच सकती, मगर ये कि इससे पहले कि उस मरहले पर पहुंच चुकी हो जब एक कमजोर आदमी एक ताकतवर शख्स के बिलमुकाबिल खड़ा हो जाए और बगैर उसके कि इसकी जबान में कोई लुकनत आ जाए, घबरा जाए, मतलब डर के बात ना कर सके, वो अपना हक उससे तलब करके, जनाब मेरे पैसे दे दो भाई, मेरा हक है मुझे दे दो, नौकरी मेरा हक है, बिजली मेरा हक है, पानी साफ पानी मेरा हक है, अच्छी सेहत के मसाइल मेरा हक है, अब महंगाई आपने क्यों कर दी है, क्यों जो है पेट्रोल नहीं मिलता, ये सारी चीजें हक है, क्यों आप मेरी मजहबी बुनियादी हकूक के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, क्यों आप हमारे ऊपर मजलिस की वजह से FIRें काटते हैं, हत्ता घरों के अंदर जो मजलिसें होती हैं उस पर भी आप FIRें काटते हैं, ये हमारा बुनियादी हकूक है, ये बात करने की कह रहे क्यों नहीं करे, तो फिर कोई देता भी नहीं, समाज उठे इसके लिए, माशरा ऐसा बने कि पूरा माशरा उठ के कहे भाई ये क्या हो रहा है। इस मामले में बाज हवालों से, मैं नहीं कहूंगा सार, बाज हवालों से यूरोप का माशरा बेहतर है समाजी इंसाफ और बाज पहलू को लेकर, ना कि हर पहलू को लेकर, इन्होंने कुछ बेहतरी अपने अंदर पैदा की है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ब्लंडर्स भी किए हैं अलबत्ता, अपने हद तक किया है, दूसरे समाज के लिए नहीं, अपने समाजों के लिए है। अच्छा, ये एक शहीद मुतहरी जो है एक दर्द बयान कर रहे हैं, अगर हम इस पहलू का एक आइडिया आपको मिला है, अगर अगर हम आगे बढ़ते हैं और सफा नंबर 59 पे आ जाएं, तो फरमाते हैं इमाम अली ऐसे आबिद हैं कि ऐन हालत नमाज में तीर उनके बदन से निकाला जाता है, लेकिन वो हक और इबादत में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें होश ही नहीं आता और एहसास तक नहीं होता, वो मेहराब इबादत में इस कदर रोते और पेच उताब खाते हैं कि इसकी नजीर नहीं मिलती। ये तो थी उनकी रातें, लेकिन जब दिन निकलता है तो यूं मालूम होता है कि कतअन वो आदमी नहीं जो रात को मेहराब में था। वहीं अली जब दिन में अपने असाब के साथ बैठा तो उनका चेहरा हंसता मुस्कुराता हशबाश होता है। ये बात हमारे आज के मजदूर और आबिदों की हालत के बरक्स है, क्योंकि ये लोग जब जाहिद और आबिद बन जाते हैं तो उनकी खासियत ये कि वो नाक बहू चढ़ाए और माथे पर बल डाले रहते हैं, लोगों पर धौंस भी जमाते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इमाम अली की सिफतों में से यह था कि आप हमसे बड़ी यानी असाब कहते हैं बड़ी खंदा पेशानी से मिलते थे, आप इतने खुश तबीयत हत्ता कि बजलगू थे, यानी हंसी मजाक के से अंदाज में, यानी वो नहीं जो हमारे पास है, मुस्कुराते हुए बड़े तरीके से पेश आते थे कि जब उमर इब्न आस के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा था तो कहता था अली खिलाफत के लिए मौजू नहीं है, भाई क्यों बराबर नहीं है, इसलिए कि वो खंदरू हैं, यानी वो मुस्कुरा के मिलते हैं हर किसी से, फ्रेंडली हो जाते हैं, फौरन फ्रेंडली तरीके से पेश आते हैं, रख रखाव नहीं करते, ये जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, थोड़ी सी जो है ना वो एक क्या कहते हैं डिस्टेंस में नहीं रहते कि थोड़े से रख रखाव और जाहिरी बनावट और उसके साथ पेश नहीं आते, फ्रेंडली हो जाते हैं फौरन। खिलाफत के लिए एक सख्त आदमी चाहिए ताकि लोग उससे डर। देखें यहां तक जो है अब इसको एक नेगेटिव सिफत के तौर पर लिया उन्होंने, जबकि ये एन पॉजिटिव सिफत थी इंसान कामिल की जो है पॉजिटिव सिफत के। मौला अली सलाम का कोल कोट करते हैं, नाबग के बेटे उमर इब्न आस पर हैरत है कि वो मेरे बारे में एहलशाम से कहता फिरता है कि मुझ पर मिजाह पाया जाता है और मैं तफरी में पड़ा रहता हूँ, उसने गलत कहा और कहकर गुनाहगार हुआ। लोग कहते हैं कि अली लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, हत्ता कि जब एक मुजाहिद और एक सिपाही की शक्ल में मैदान जंग में दुश्मन का सामना करते हैं तो भी उनका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, जैसा कि आपके बारे में कहा गया वो अली हैं जो रात को मेहराब इबादत में बहुत रोने वाले, मैदान जंग में बहुत हंसने वाले। ये कैसी मखलूक है? हाँ, ये कुरानी इंसान है और कुरान ऐसे ही इंसान चाहता है, यानी एक इंसान के अंदर तमाम जो पहलू है मुस्बित पहलू वो अपने कमाल को है, यानी हमसे भी ये नहीं चाहता है। आगे कुछ मिसालें दे देंगे या फिर हमने शायद डिस्कस किया है कि एक ऐसा इंसान कामिल नहीं हो कि जो इबादत में और अखलाक में फर्ज करें लंबा होके ऊपर चढ़ गया हो, समाजियात और क्या कहते हैं दीगर किरदारों में बिल्कुल भोना सा छोटा सा बन के रह गया हो। फर्ज करें अगर एक ऐसे इंसान कामिल को हम ड्रॉ करने लग जाएं तो हम जब उसकी अखलाक बनाएंगे तो वो 7 मंजिलें बन जाएगा लंबा होकर, जब उसका सोशल किरदार बनाएंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, तो किस किस्म की शक्ल बनेगी, कार्टून बन जाएगा एक। बच्चों को जो कार्टून आते हैं उस तरह का एक कार्टून ही बन जाएगा ना, नाक लंबी सी, कान बड़ा सा, जिस्म छोटा सा, बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। ये नहीं है, सारी चीजें इक्वली ग्रो कर रही हो, सारी चीजें इक्वली ऊपर जा रही हो, इसमें शक नहीं। रात का उठना खूब नफ्स खुशी और ठिकाने से बाहर चले, हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप खुद जो है पढ़ सकते हैं इस राज़ी के कुछ अशआर, उनके जरिए से इसी चीज की शहीद जो है तायिद कर रहे हैं। फारसी के जो अशआर हैं वो आप खुद स्टडी कर सकते हैं, उनकी इबारत को मेरे ख्याल में पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहे हैं जो पेज नंबर गालिबन 62 में है, बड़ी फायदेमंद हो सकती है हमारे लिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ऐसे ही हैं, उनका दिन और रात ये है कि ये दिन और रात ये है, ये सिफत और ताबीर जो हम इस वक्त बयान कर रहे हैं, यानी कामिल इंसान, एक जामेउल अजदाद बशर, जामेउल अजदाद बशर यानी मतलब एक ऐसा इंसान जो जामेउल अजदाद है। अजदाद यानी जिद, जिद यानी अपोजिट या अपोजिशन, या जो है उसकी अपोजिट साइड। मसलन एक कंसेप्ट है कि जो आदमी अच्छा पॉलिटिशियन होता है वो अच्छा थिंकर नहीं हो सकता, जो आदमी एक अच्छा सोल्जर हो सकता है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, जो एक अच्छा दानिश्वर हो सकता है वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। ये इस तरह के तसव्वुरात हैं। कहते यार एक डॉक्टर जो है ना वो डॉक्टर ही हो सकता है, एक लीडर नहीं हो सकता। जामिउल अजदाद मतलब एक ऐसा तब आ जाता है ये लफ्ज की यार, एक बंदा एट द सेम टाइम प्रोफेशनली फर्ज करें इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंसेस का एक्सपर्ट है, इन द सेम टाइम पॉलिटिक्स के में एक्सपर्टीज रखता है, एक बेहतरीन लीडर है, लीड कर सकता है, और फिक्री जब मौजूदात आते हैं तो बेहतरीन किस्म का एक दानश्वर और थिंकर है, अखलाकी मौजूदात आते हैं तो एक बेहतरीन किस्म का जो है खुद भी मुअल्लिम अखलाक है और खुद भी बाअखलाक है, मुअल्लिम अखलाक भी है, एक फलसफियाना बातें आती है तो उसमें भी इसी तरह है। ये है जामिल अजदाद, मौलाए कायनात जो है क्या, एक कामिल इंसान, एक जामिल अजदाद बशर यानी मुख्तलिफ औसाफ में कमाल रखने वाले इंसान, इंसान जिसे हम पीर कह रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम हजारों साल से कुछ ऊपर आज तक इसी सिफत से पहचाने जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में जोर जोरदार भी कहता है जो क्रिश्चियन है, और भी मतलब बारी एक है पता नहीं अतवान बारा जो एक और क्रिश्चियन है सीरिया के, उन्होंने किताबें लिखी है इमाम हुसैन और हजरत जैनब सलाम अलैहि के ऊपर, जो है अतवान बारा, वो भी यही कहता है कि ये जामिल अस्ताद हैं। जिसने भी मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में तहकीक की है वो यही कहते हैं कि जामिल अस्ताद है इमाम अली अलैहिस्सलाम। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि एक वक्त में वो आबिदों की दुनिया में, एक वक्त जाहिदों की दुनिया में होते हैं, एक वक्त फलसफियों की दुनिया में, एक वक्त आरिफों की दुनिया में, एक वक्त में सिपाहियों और अफसरों की दुनिया में, और एक वक्त में आदिल हाकिमों की दुनिया में होता है, एक वक्त में काजियों की दुनिया में, एक वक्त में मुत्तकियों की दुनिया में होता है वो आला हाजा। चुनांच इंसान देखता है अली तमाम दुनियाओं से करते हैं और तमाम दुनियाओं में उसी तरह मौजूद हैं कि बशर की दुनियाओं में से किसी दुनिया से गायब नहीं है, यानी कोई नहीं कह सकता कि भाई इमाम अली मेरे लिए कैसे नमूने अमल हो सकते हैं। यानी एक औरत नहीं कह सकती, एक मर्द नहीं कह सकता, एक जाहिद आबिद हाकिम दानिश्वर कोई भी ये नहीं कह सकता जी कि मेरे लिए तो वहां कुछ नहीं है। यानी तमाम अइमा अलैहिस्सलाम इसी तरह हैं, इसीलिए जब हम कहते हैं ना इंसान कामिल हैं, कामिल व अकमल व अतम हैं, तो मतलब ये है इंसान कामिल व अकमल व अतम तमाम पहलू से। हमारे यहाँ मेंबर में इस ये लफ्ज जो है एक और मीनिंग्स में चला गया, मानवियात और रूहानियात और हमने बढ़ा दिया इंसानों से ऊपर, और ये नहीं, इंसान होते हुए सिफात औलिया ये इंसानी में कामिल व अकमल व अतम है, इसलिए कि यानी सिफात खुदा की तजल्ली और परतों हैं, जो अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई हैं वो सिफात जाहिर हो रही हैं इन हस्तियों में लेकिन अपनी इंतहा को पहुंचकर। यही सिफात हम सब के पास होनी चाहिए, हम में से हर एक के पास ये सिफात होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है वो हमारे लेवल पर, हम जब हम कहेंगे कि गैर मासूम में कोई कामिल है जैसे मसलन इमाम खुमैनी की मिसाल हम दे देते हैं, या इस वक्त राहबर की मिसाल हम देते हैं, या इस तरह फर्ज करें कि शेख सदूक की कोई दे रहा हो और मुला अहमद नाराकी की दे दें, तो मतलब इसका ये है कि भाई वो गैर मासूम में एक इंसानों में जो है सिफात कामिल अकमल में पहुंचे हुए हैं। मजीद उसी पहलू को लेकर वजाहत करते हैं और उसी को जो है मुख्तलिफ जावियों से शहीद जो है बयान कर रहे होते हैं। फिर फरमाते हैं कि ये पेज नंबर आप लोग आ जाएं, मेरे ख्याल में 64 है। 64 के अंदर जो है एक पैराग्राफ है जिसमें कहते हैं पस इंसान, एक आखिरी पैराग्राफ है, पस इंसान एक कामिल। पस कामिल इंसान से मुराद वो इंसान है जो तमाम इंसानी कदरों का मालिक हो, एक इंसानियत के तमाम मैदानों में गोया सबकत ले गया हो, दूसरों से आगे निकला हो। अब हम इमाम अली जैसे कामिल इंसान से क्या सबक सीखें? हमें उनसे ये सबक सीखना चाहिए कि फकत एक कदर को लेकर दूसरी कदरों को ना भूलें। कोई एक वैल्यू को ले लें और दूसरे वैल्यू, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, अफसोस के साथ ज्यादातर जो हमारे खुतबा हजरात हैं, खासकर जिन्होंने हौजे की शक्ल नहीं देखी है या सही तरह नहीं देखी है, या खताबत की रिक्वायरमेंट की वजह से अपनी पॉपुलरिटी को लेकर वगैरह वगैरह चीजों को लेकर मजबूर हो जाते हैं, जानते हुए गड़बड़ करते हैं, वो एक पहलू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, दूसरे की वायलेशन करते हैं। मसलन तौहीद को, इमामत को साबित करते हुए तौहीद को खराब करेंगे, आइम्मा की फजीलत बयान करते हुए शिर्क की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हमारे पास बना हुआ है। हमारे लिए भी इस तरह है कि बाज औकात देखते हैं एक इंसान नमाजों में बड़ा पाबंद है, लेकिन सामाजिक कामों में कोई रोल नहीं उसका, कोई गरज नहीं है, कहाँ जुल्म होता है तो कोई उसको दर्द का एहसास भी नहीं है, कहीं पर अगर जो है ज्यादती हो रही है तो कोई नहीं, उसको गरज ही नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। मसलन ये जो कहते हैं हमें आजादारी करने दो, मजलिस करने दो, मातम करने दो, हमें सियासत से क्या लेना देना, तो हमें उससे क्या, ये यही सोच है। एक कदर को लेकर दूसरी कदरों को ना भुलाएं। हम एक चीज को लेते हैं कि तो हमें आजादारी, मतलब हमें सीना पीटने दो बाकी दुनिया डूब जाए, हमें कोई लेना देने नहीं है। इमाम हुसैन ये था, इमाम हुसैन के सामने तो यही ऑप्शन यजीद ने रखा था कि आप अपनी खैर मनाएं, आप अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढें, छोड़ दें इन चीजों को। इमाम हुसैन ये अगर कर लेते तो कहते भाई मुझे जो है ना एक रूहानी एक शख्सियत के तौर पर एक्सेप्ट करें, बाकी पॉलिटिक्स आप करें। ये तो नहीं हो सकता है, बाकी आप इख्तदार आप संभालें, आप जो करना है करें, मैं रूहानी शख्सियत हूँ बस, मैं एक रूहानी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पर रहूंगा। ये इमाम अली भी ये काम कर सके, इमाम हसन भी, बकिया आइमा भी कर सकते थे, तो फिर कोई किसी को शहीद करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हम तमाम कदरों में तो ऊंचे दर्जे पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये रियलिटी है, हकीकत है, लेकिन हमें चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो एक दूसरे के साथ तमाम कदरें इख्तियार करें, यानी कि बैलेंस तो रहे ना आदमी। अगर हम कामिल इंसान नहीं है तो कम से कम मुतआदिल इंसान, तो मुतआदिल यानी एक बैलेंस आदमी है यार, एक बैलेंस है। देखे इबादत में भी ठीक है, वाजिबात अदा करता है, बेहतर तरीके से कर लेता है, क्या कहते हैं, मुहर्रमात से बचता है, तमाम मुहर्रमात से बचता है, सिर्फ जाती नहीं कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदो तो इसलिए इसमें जेलेटिन है कि नहीं है, एनिमल्स है या इंडस्ट्रियल है या केमिकल के थ्रू बनी है, ये चीजें नहीं दे, ये तो देखता हो बड़ी ताकीद के साथ, लेकिन वो ये साथ में ये नहीं देखता है कि यार दुनिया में जो है ना ज्यादती है, इंसाफ नहीं है, जरूरत, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, कोई वहां भूखा मर रहा है, कोई इलाज के लिए वजह से मर रहा है, मैं मदद कर सकता हूँ जितना भी हो सके, लेकिन मैं नजरअंदाज कर दूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट खरीदते वक्त तो जरूर देखूं। तो ये वही है, एक कदर को देख रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, मुतआदिल बैलेंस तो रहे आदमी कम से कम, जहां हर आलम हलाल और इन चीजों की तरफ तवज्जो दे रहा है, मेहनत कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, वहां पर दूसरे मसाइल को, वो उधर भी तो हलाल और हराम का मसला है। हाँ, वही वक्त होगा जब हम तमाम मैदानों में एक हकीकी मुसलमान की शक्ल में दाखिल हों। बस ये हैं माने कामिल इंसान के और ये हैं नमूने कामिल इंसान के। इस बारे में बातें हैं, इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में करूंगा। आगे जो है अगली नशिस्त जाहिर है स्पीचेस हैं, ये तो माह रमजान आ रहा था, गालिबन वो रमजान की मुनासिबत से फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। और फरमाते हैं कि मैं रमजान का महीना है तो मैं जरा गुफ्तगू करना चाहूंगा। और कुरान मजीद की एक आयत को बयान करते हैं, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि सिर्फ ये है कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और उनका इम्तिहान नहीं ले। इतफाकन मैं शबाए जुमा के लिए एक सेशन रखा हुआ है, उसमें भी मैंने इसी आयत को इस दफा के लिए उठाया हुआ था कि अहसिबन्नासु अन यकूलू आमन्ना, अहसिबा, लोगों ने ये गुमान किया है, उनका ये ख्याल है, वो ये समझ बैठे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की है उन्होंने, अयुत्रिकु अयकुलु आमन्ना, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अली वली अल्लाह, नारे हैदरी या अली, ओ मोमिन हो गया। वहुम ला युफ्तिनून, कोई उनका इम्तिहान नहीं होगा, किसी किस्म का इम्तिहान नहीं कर, हम छोड़ देंगे बस, ठीक है जी आ जाओ, हो गया सर्टिफिकेट पकड़ो चले जाओ, ये करेंगे बगैर किसी किसी नबियों को हमने नहीं छोड़ा, आईमाई मासूमीन को नहीं छोड़ा, ये हमेशा जहन में रखें ये बात। हम साउथ एशियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, जो जितना अजीम होगा उतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर अजीम है तो उनकी जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी है, कुर्बानी भी इतनी बड़ी देनी है, और दे दिया। ये अजमत मुफ्त में, खुदा नहीं, खुदा के साथ किसी के लिए, कोई खुदा के बेटे नहीं है, कोई खुदा के रिश्तेदार नहीं है, सब उसकी मखलूक है, आदम से लेके खातम तक सारी मखलूकात में से अगर किसी को किसी पर बरतरी और फजीलत दिया है, कमाल दिया है, तो उसके साथ उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ी उनको जो है कुर्बानी के भी कहा है, और उनको अपनी शख्सियत, अपनी हस्ती और मकाम और मंजिलत के हिसाब से उनको सेक्रीफाइस करना है। जैसे कि हमारे देखें इमाम हुसैन जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, इसीलिए कहते हैं बरोज़ क़यामत इमाम हुसैन का मकाम सबसे मुनफरिद नजर आएगा। आईमाई मासूमीन की जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी है, जितने बड़ी अजमत वो रखते हैं इतना ही बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है, इतने बड़े इम्तिहानों से वो गुजरे हैं, आराम से एक जगह बैठने नहीं दिया है, कोई किसी जगह में आराम से कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी उनकी, ना उनकी औलादों की, उनकी औलादों को तो तितर बितर कर दिया। देखें आप जाके जो हरम भरे हुए हैं आइमा के, जो जितने भी आइमा की औलादों के, दूर आबादियों से दूर उनके जो अच्छे अच्छे असहाब थे वो भी दरबदर हो गए, उनको भी किसी जगह में आराम से बैठने नहीं दिया। शहीद अव्वल और शहीद सानी जो कि लेबनान से ताल्लुक रखते थे, जिनकी किताबें हौजे में सिलेबस का हिस्सा है, उनको जो है हजरत याह्या की तरह चीरा है, दो दरख्तों से बांधकर जेलों में डाला, खून से लिखा किताब को, स्याही नहीं थी, इंक नहीं मिली, अपना खून निकाला, और बकिया जो हम पढ़ते हैं शरह लोमा, ये जो दर्स खारिज के करीब तरीन की किताब है, वो आधी किताब उन्होंने खून से लिखी है, जेल के अंदर थे, बंद थे, वहां कलम दवात तो नहीं मिलती उस जमाने में, अपना खून निकाला और लिखना शुरू कर दिया और कंप्लीट किया उस किताब। जो जितनी आजमत रखता है वो ना सोचे मैं खुदा का पसंदीदा हूं तो बस खुदा मुझे कंफर्ट जोन में डालेगा, ये कभी गलत तरीका है, अगर ये गलत सोचने का, यहासिबुन्नास, ये क्या तुम लोगों ने समझ लिया, तरीके से समझते हो, यकुलु आमन्ना, ईमान लाए हो तो बस ठीक है और छुट्टी हो गई, जाओ जी मजे करो, ध्यान नहीं लिया जाए, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 है। तो ये इस आयत के अंदर फरमाते हैं, आयत शरीफा में मुसलमानों से खिताब फरमाया, क्या मोमिनीन ये ख्याल करते हैं हम उन्हें आजमाइश में नहीं डालेंगे, नहीं बल्कि हम उन्हें जरूर आजमाएंगे। इमाम अली फरमाते हैं जब ये आयत नाजुल हुई तो मैं समझ गया कि रसूल अकरम के बाद इस उम्मत को बड़े बड़े इम्तिहान और आजमाइश पेश आएंगी, क्योंकि उम्मत ईमान लेके आई है। तब मैंने रसूल अकरम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ इस आयत में आया है इसका क्या मकसद है? हाँ, हजरत ने फरमाया, या अली, मेरे बाद मेरी उम्मत इम्तिहान और आजमाइश में डाली जाएगी। ये नाजुल बलागा में खुतबा नंबर 154 है। इमाम अली मजीद फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम से फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो लोग उहद में शहीद हुए हैं उनकी तादाद 70 थी, और उनका सरदार हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे, जो ओद के जांबाज सिपाही थे, लेकिन मुझे शहादत का मौका ना मिला और मैं इससे फैज से महरूम रह गया हूँ। उस पर मैं बहुत ही मुस्तरिब हुआ कि मैं ओहद में ये फैज क्यों हासिल न कर सका और ये फैज मुझसे क्यों दूर हो गया। आन हजरत ने फरमाया, अगर इन मकामात पर शहादत नसीब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बलाखरा तुम्हें राह खुदा में शहादत का शरफ हासिल होगा। जंगे उहद में मावली अलैहिस्सलाम एक 25 साल जवान थे, बीबी फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहा से नए नए रिश्ते इज्दवाज में मुंसलिक हुए थे, और अभी इमाम हसन का के सिवा उनका कोई फर्जंद न था। शादीशुदा जवानों की हमेशा ये आरजू होती है कि उनकी जिंदगी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती चली जाए, लेकिन घर मिल बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, बड़े 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 ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन जरा आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी वाहिद और बड़ी आरजू ये है कि वो खुदा के राह में शहीद हो जाए। रसूल अकरम ने फरमाया, ए अली तुम भी शहीद हो जाओगे, फिर सवाल क्या है अली शहादत के वक्त तुम कैसे सब्र करोगे। इमाम अली ने अर्ज किया, आप ये ना फरमाएंगे कि कैसे सब्र करोगे, बल्कि ये फरमाए कि कैसे शुक्रगुजार हो जाओगे अल्लाह अकबर, शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये सब्र का नहीं बल्कि शुक्र का मकाम है। देखे मारिफत ये फुस वाली कैसर को खत लिखते हैं, उसी खत के वही जो शोहरे आफाक खत है उसके एंड पे लिखते हैं, मालिक कहता है मैं खुदा से आरजू रखता हूँ कि मैं और आपके लिए ली वाला का यख्तिम ली वाला का बिशादत व शहादा, कह रहे कि मैं और तुम्हारी जिंदगी का खात्मा जो है ना सआदतमंद बनाए, मतलब शहादत के जरिए से। चनांचे अपनी जिंदगी के इस आखिरी रमजान में इमाम अली पर एक अजीब कैफ व सुरूर तारी था, यानी जैसे बहुत से आदमी को खबर मिले ना किसी बड़ी अहम चीज की, जैसे आपको जॉब लग गई है, आपका पासपोर्ट आ गया है, आपकी इमिग्रेशन एक्सेप्ट हो गई है, हमारी होती है ना कैफियत, आपके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, या आपको फला जो है वो लोन पास हो गया है, या जो है आपको ये फला जो घर आप लेना चाह रहे थे वो हो गया है, ये कितनी कैसी खुशी महसूस करता है इंसान। यानी ये मादी तौर पे हम महसूस, क्योंकि हमारी खुशी इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है ना, पहले शादी खुशी से जुड़ी हुई, कहते हैं यूनिक मोमेंट है और बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं लाइफ में आने वाला वाहिद मोमेंट है शादी, सबकी आरजू होती, यही हम तो इस तरह तरबियत कर रहे हो चुके होते हैं घरों में, हमारी तो आरजू ही है, यही है, यही आरजू है हमारी। स्टूडेंट है तो उनकी अपनी एक आरजू है, जॉब की तलाश करने वाले अपनी आरजू, लड़की उसकी अपनी, वो लड़के अपनों उसका हमारी आरजू है, तो इतनी छोटी 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 आरजू है, इसलिए हम आइमा की भी आरजूएं बनाते हैं, करबला में कासिम की शादी करना आरजू थी, जरूरी थी, माँ बाप की अच्छा वो करबला वाले हमारे जैसे माँ बाप थे, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे वालिदैन सोचते थे हमारे, और उनमें कोई फर्क नहीं था, तो वो करबला में अजमत पे कैसे फाइज हो गए, ऐसे कैसे इंसान आए कामिल व अकमल थे जिनकी आरजुएं वही थी जो हमारी हैं, तो हमारी तो बिल्कुल सती आरजुएं हैं। मौला अली के कहते हैं कैफ व सुरूर तारी था, जब आपके अहले बैत मुस्तरिब और बेचैन थे, जाहिर है आपकी शहादत के बारे में जो खबरें रसूल अकरम ने दी थी, जो अलामतें खुद अली को मालूम, कभी कभी उनका इजहार भी किया करते थे, जाहिरी जो सिचुएशन है वो बयान कर रहे हैं शहीद, इन अलामतों की मौजूदगी के नतीजे में आपके अहले बैत और करीबी असहाब के दिलों में इस्तराब और बेकरारी पैदा हो गई थी, क्योंकि आप अजीब और मरमूज बातें करते थे, यानी ऐसी बातें जो कि राजदाराना किस्म की हैं, हर कोई उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि क्या फरमाना चाहते हैं। अगरचे आप अपनी जिंदगी के आखिरी रमजान में हर रात कहे ना कहे मेहमान होते, लेकिन वहां बहुत ही कम खाना खाते, बाप की यह हालत देखकर आपके बेटे बेटियों का दिल उड़ता था, उन पर रकत तारी हो जाती थी, नेचुरल है, जाहिर है खुदा ताला ने ये जो अंसुर रखा है ये भी इसी कमाल का हिस्सा है, क्योंकि वो आपसे बेहद मोहब्बत रखते थे, वो पूछते थे आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं, आप फरमाते थे मैं चाहता हूँ खुदा अपने खुदा से इस हालत में मुलाकात करूँ कि मेरा पेट खाली हो, वो समझ जाते थे कि इमाम हमारे बाबा इमाम अली को अनकरीब ही वकूफ़ पज़ीर होने वाली किसी चीज़ का इंतज़ार है। बाज़ औक़ात आप आसमान की तरफ देखते और कहते थे मेरे हबीब रसूल ने जो खबर दी थी वही, उन्होंने कुछ फरमाया वजूद नहीं, ये अब वो वक्त नजदीक है कि और बहुत ही नजदीक है। इमाम अली माह रमजान के 13वें दिन एक ऐसी बात कही जिसने बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर दी, जाहिर है कि ये जुमे का दिन था, आप खुतबा दे रहे थे वो, और तब आपने फरमाया मेरे बेटे हुसैन इस महीने के कितने दिन बाकी हैं, उन्होंने जवाब दिया 17 दिन, आपने फरमाया हाँ अब वो वक्त नजदीक आ गया है जब ये दाढ़ी इस सर के खून से रंगीन हो जाएगी। फिर जब रमजान मुबारक की 19वीं तारीख आई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद आपके पास आए और रात का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में रहे, फिर इमाम हसन अपने घर चले गए। इमाम अली एक खास हुजरा था जहां आप रातों को बात किया करते थे और सोते नहीं थे, जब अपने कामों यानी जिंदगी और माशरे के कामों से फारिग होते तो अपने इसी हुजरे में जाकर खुदा तआला से राज़ो रियाज़ में मशगूल हो जाते थे। अभी सुबह तुलू नहीं हुई थी कि इमाम हसन अपने वालिद गामी के पास आए और सीधे उनके हुजरे में गए। अमीर मोमिनीन सलाम अपने फर्जंदों का खास एहतराम करते थे, जो बीबी फातिमा जहरा सलाम की औलाद थे, इस तरह आप हजरत जहरा और रसूल अकरम का एहतराम मलूज खातिर रखते थे। बस आपने अपने बेटे इमाम हसन से फरमाया प्यारे बेटे मुझे पिछली रात नींद आ गई, मैं आलम रोया में रसूल अकरम को देखा तो अर्ज किया, जब मैंने पहले अर्ज किया जब ये आलम रोया कहते हैं वही मनामिया की कैफियत होती है, क्योंकि ये जो खास एक कशफ और वही के नुजूल और इल्का और इस तरह के मरहलों में सोया नहीं होता है, वो हस्ती एक मनामिया की कैफियत में जाते हैं। या रसूलुल्लाह, मैंने आपकी इस उम्मत के हाथों बहुत सदमे उठाए। आन हजरत ने फरमाया इन पर नफरीन करो, मैंने उन पर नफरीन की और चाह कि खुदा मुझे उनसे ले ले और एक नालायक शख्स को उन पर मुसल्लत कर दे। देखिए, इमाम ने नफरीन ये नहीं की उम्मत बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ताकि मुझे उठा ले इनसे, यानी एक ऐसी हस्ती का उठ जाना आसान तो नहीं है। कायनात से बहुत सारी रहमतें नियमतें उठ गई उनके साथ, ठीक है, नाम अलबदल आ गया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, लेकिन मौलाए कायनात से मरबूता जो नियमतें थी उससे महरूम हुआ है ना। हमारे यहाँ हदीस है, एक आलिम जब फोत होता है, मरता है, तो एक खला पैदा होता है, इस्लामी खला पैदा होता है, जिसको कोई चीज पूर्ण करे आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये काम एक काम आलिम दीन की बारे में ये बात बताई है, एक इमाम है, इमाम जैसी हस्ती का उठ जाना आसान, तो ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी सजा यही है। कुछ अहदीस है जिसमें फरमाता है खुदा जब किसी कौम से नाराज होता है तो उलमा को दूर करता है उनसे, या उनको उलमा से दूर करता है, और वो जो है हमारी जबान में कह सकते हैं वो जो है जादूगरों और मदारियों के हाथ में चले जाते हैं, जो उनको तबाही की तरफ लेके चले जाते हैं। यहाँ मौलाए कायनात फरमाते हैं आप जो है मुझे इनसे उठा लें, और इनके ऊपर बदले में क्या होगा, नालायक शख्स आ जाएगा जिन पर मुसल्लत होगा, और नालायक उन्हें क्या करना है, तबाह बर्बाद कर देना। लोगों ने इमाम अली से मुआफ़क़त न की, उस रास्ते पर चलने पर आमादा नहीं हुए जो आपने दिखाया। इमाम अली को दुख पहुंचाने वालों में पहले तो असहाब जो है आयशा थे, असहाब आयशा थे, यानी जो आयशा के साथ आए थे जिन्होंने बेयत तोड़ दी। उसके बाद माविया उठा, जो कैसे काम गया, मुख्तलिफ जराए किए। माविया दुनिया के तेज तर्रार आदमियों में से था, बहुत चालाक था, इतना चालाक था कि उसे यह भी मालूम था कि इमाम अली को किन बातों से दिली तकलीफ पहुंचती है, वो जान बूझ कर वही काम करता था। तीसरा और आखिरी गरोह खवारिज का था, यानी वो जाहिद खुश्क लोग जो अपने पक्के अकीदे ईमान और खुलूस से इमाम अली को काफर गर्दानते थे। क्या आपको इल्म नहीं कि इमाम अली के साथ क्या सलूक करते थे? हकीकत यह है जब इंसान अमीर मोमिन के मसाइब पर निगाह डालता है तो उसे हैरत होती है, क्योंकि इतने मसाइब बर्दाश्त करने की तो एक पहाड़ भी ताकत नहीं है, पहाड़ भी ताकत नहीं रखता। आप बताएं इमाम अली अपने दर्द दर्द किससे कहें? अब जबकि अली रसूल अकरम को आलम रोया में देखते हैं तो कहते हैं मुझे आपकी उम्मत ने कितने सदमे पहुंचाए, मैं उनके साथ क्या करूं? फिर आपने फरमाया प्यारे बेटे, आपके नाना ने मुझे हुक्म दिया कि ए अली, इन मुखालिफों पर नफरून करो, और मैंने भी आलम रोया में उन पर नफरीन की जो इस तरह थी, यानी खुदा मुझे जल्दी मौत दे दे और उस पर ऐसा हाकिम मुसल्लत कर दे जिसके ये लायक है। जाहिर है इस जुमले से कितनी परेशानी और इजतराब पैदा होता है। मैं यहाँ पर एक रोक के एक बात अर्ज करना चाहूँ, बस हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि वो किसी जगह में, पाकिस्तान में किसी शहर में थे, उसके खिलाफ पूरा एक महाज खड़ा किया गया, बहुत ही अच्छे और फिक्री आलम दीन थे, और उनको वहां से मजबूर किया कि वो हट जाए। कह रहे हैं कि जब मैं वहां से हट रहा था तो उस वक्त जो है ना मेरे दिल में ये ख्याल आया कि खुदा तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ना कोई ऐसा शख्स मुसल्लत कर दे कि तुम लोगों को उसके बाद पता चले। और उसके बाद कह रहे हैं कि उस शहर का यही हाल है कि मेरे बाद कह रहे हैं वहां पे 10 बंदे और आए हैं, और हर जो आता है वो उनको ठीक ठाक जो है रुला के चला जाता है। तो वाकई ये सूरत हाल होती है। फिर आप घर से बाहर आते हैं, बतखें चिल्लाती हैं, तो आप फरमाते हैं हाँ, इस वक्त तो सिर्फ परिंदों की आवाज है, लेकिन ज्यादा वो देर नहीं गुजरेगी, ज्यादा देर नहीं गुजरेगी, जगह इंसानों के नौहे और मातम की आवाजें सुनाई। अमीर मोमिन के फर्जंदों ने आपका रास्ता रोका और अर्ज किया कि बाबा जान, आज हम आपको मस्जिद नहीं जाने देंगे, लाजिम है कि आप किसी दूसरे को अपने नायब के तौर पर मस्जिद में भेजें। पहले तो आपने फरमाया मेरे भांजे जोदा इब्ने जीरा से कहो कि जाकर लोगों को नमाज पढ़ाएं, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल दिया और फरमाया नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। उन्होंने अर्ज किया आप इजाजत दें कि कोई आपके हमरा जाए? आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे हमरा जाए। वो रात आपके लिए पसंदीदा रात थी और आपका ये इरशाद आपके अंजाम कार की ताबीर है। मेरी मिसाल बस उस शख्स जैसी है जो रात भर पानी की तलाश में चले और सुबह होते ही चश्मे पर पहुंच जाए, और मैं इस ढूंढने वाले की मानन हूं जो मकसद को पाले। जाहिर है कि प्यासा रात भर पानी ढूंढते ढूंढते चश्मे में पहुंच जाएगा तो कितनी खुशी होगी। हजरत फरमाना चाहते हैं कि मेरे लिए ये जो सुबह है वो उस प्यासे की तरह है जो पूरी रात बेताबी से जिसने गुजारा हो, क्योंकि वो चश्मे शहादत पर पहुंचने वाले हैं। जरबत लगने के बाद जब आपको बिस्तर पर लिटाया तो ये जुमले इरशाद फरमाया, खुदा की कसम जब ये जरबत मेरे सर पर लगी तो मिसाल उस आशिक जैसी थी जो अपने माशूक तक पहुंचता है, नीज मेरी मिसाल उस शख्स जैसी थी जो अंधेरी रात में पानी का चश्मा तलाश करता है ताकि अपने खेमे और साजो सामान लेकर वहां पहुंच जाए, फिर अगर उसे पानी का चश्मा मिल जाए तो कितना खुश होता है। कुछ फारसी के अशार बयान कर रहे हैं तो हम इसको इवाइड करते हैं। आगे जो है मौला की शहादत के हवाले से बयान फरमाना चाहते हैं क्योंकि बीच में ये एक मुनासिबत आ गई थी तो शहीद ने उसके ऊपर ज्यादातर गुफ्तगू किया है। और बस 74 है पेज और किताब की ये थर्ड जो सेशन है, तीसरी निशस्त है जो इंसान की माहियत को लेकर है, माहियत के बारे में मैंने शुरू में अर्ज किया था। और यहाँ पर भी सूरह बकरा की आयत नंबर 124 को ही शहीद ने इंतखाब किया है, वो मशहूर आयत जो कि अक्सर पढ़ते हैं, वह इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना वाली, जब इब्राहिम को उनको परवरदिगार ने में आजमाया तो उन्होंने पूरी कर दी, यानी वो आजमाइश पूरी हो गई। तब खुदा ने फरमाया मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, यानी इम्तिहान दे दिया, पास कर लिया, इमाम बन गया। उन्होंने अर्ज की मेरी औलाद में से, खुदा ने फरमाया हाँ अगर मेरे इस अहद पर जालिमों में से कोई शख्स वाइज नहीं हो सकता, यानी तुम्हारी औलाद में कोई जालिम आएगा तो तुम्हारी औलाद होने की वजह से उस जालिम को मैं कोई जगह नहीं देने वाला हूँ, यानी कि इब्राहिम का बेटा है तो मैं मानूंगा। इसीलिए कहते हैं सादात कराम बड़ा एहतराम के साथ कहते हैं सादात कराम अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो सैयद होने की वजह से तुम्हें कोई निजात नहीं मिलने वाली। इब्राहिम को कह रहा है तुम्हारी औलाद में जालिम होगा तो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी मिसालें, नूह के बेटे को किक आउट कर दिया, खुदा ने कहा लैस मिन अहलिक, अहल में से ही नहीं तुम्हारा, जबकि वो डायरेक्ट नूह का बेटा था, कोई बीच में गैप भी नहीं आया था, नस्बी कोई जनरेशन गैप भी नहीं था, डायरेक्टली नूह का बेटा था। बीवी को भी इसी तरह किक आउट कर दिया। आइमा के बाद औलादों ने भी इस तरह गड़बड़ की है और उनको निकाल के बाहर कर, जाफर कज़्ज़ाब वगैरह आखिरी ही। जैसा कि हम जानते हैं इंसान की हकीकत और माहियत के बारे में इख्तलाफ राय मौजूद है, ये इसका फेरा क्या मौजूद है, आखिरी मिनट से उसी के साथ मैं वाइंड अप कर लेता हूँ। ये इख्तलाफ इसलिए कि इंसान की हकीकत के बारे में आज तक थ्यूरीज मौजूद है। सबसे बड़ी थ्यूरी तो वही एवोल्यूशनर जो थ्यूरी है डार्विन की, वो है सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थ्योरी, वही है जो स्टिल अभी तक, हालांकि वो साइंटिफिकली भी प्रूफ नहीं है अभी, उसके बावजूद उसी को बेस बनाया हुआ है। और ह्यूमनिज्म इंसान परस्ती का जो पूरा एक एक मकतब बन गया है, पूरी एक आइडियोलॉजी क्रिएट हुई जिसकी बेस पर ये यूरोप की सारी सोसाइटी बनी हुई है, अभी तक चल रही है। इंसान की माहियत इनसे पूछें, माहिया यानी इंसान है क्या बाबा, उसकी हकीकत रियालिटी क्या है, तो वो डार्विन की थ्योरी आ जाएगी या इससे मिलती जुलती कोई थ्योरी आ जाएगी। अब कायनात के बारे में वो अभी बिग बैंग का जो थ्योरी है वो चल रही है इस वक्त, तो ये इसलिए मुख्तलिफ है। खुदा परस्तों के नजरिए के मुताबिक इंसान जिस्म और रूह से मुरकब है, एक जिस्म और रूह से मुरकब एक जो है मौजूद है। इंसान की रूह जावेदानी है यानी फना नहीं है, उसके लिए इंसान मरने से फना नहीं होती है रूह, ये इस्लामिक थ्योरी है। मुकाबले में रूह की कंसेप्ट ही मौजूद नहीं है डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर, तो वो कहते हैं इंसान मर गया तो फना हो गया, दर्शन खत्म हो गया। मादा परस्तों के नजरिए के मुताबिक इंसान ये इसी बदन और इस बदन के निजाम के अलावा कोई चीज नहीं, मरने पर मुकम्मल नीस्त नाबूद हो जाता है। इस नजरिए की उसे बदन की तहलील के माने इंसान की शख्सियत का तहलील हो जाना, पर्सनैलिटी खत्म हो गई। इसको बाकी रखने के लिए क्या किया इन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई फिर तो कोई आदमी वो ही नहीं करेगा ना, कोई ऐसा काम ही नहीं करेगा कि वो कहेगा मेरे मरने के बाद तो कोई फायदा देता नहीं तो मैं सेक्रीफाई क्यों करूं। इसलिए आप देखते हैं और थ्यूरीज को लेके आए हैं ताकि उसके जरिए से इसको थोड़ा सा इसकी कमी को वो करे जाए। नेशनलिज्म की थ्यूरी है, कौम परस्ती की थ्यूरी, वतन परस्ती की थ्यूरीज, और ये पेश किया गया है और इस तरह की मसलन की बड़ी थ्योरीज लाई हैं जिसके जरिए से इंसानियत, चैरिटी, इंसानियत को रूह की जगह में डालने की कोशिश की कि देखें इंसानियत की बुनियाद पर आप जो है मदद करें, चैरिटी करें, हेल्प करें, लोगों की खिदमत करें, खिदमत का के जज्बे को आगे लाया, इस तरह की चीजें लाई गई, क्योंकि बका जब नहीं है तो मैं क्यों ऐसा काम करूं जिससे मेरा दी एंड हो जाए। भाई एक सोल्जर क्यों लड़ेगा, एक सिपाही क्यों लड़े, क्यों अपनी जान गंवाए, कहेगा बाबा मैं, मेरे पास यही एक लाइफ है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास दी एंड हो गया, फिनिश, नाबूद खालद मिट्टी बन गई। आप दया के एजाज से सलूट मार के दफनाओगे गार्ड ऑफ ऑनर दे के, तो उसके बाद मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो नाबूद अदम हो गया, जैसे था ही नहीं। तो ये मुकाबले में थ्योरी, अलबत्ता इसके अंदर पेचीदगियां हैं, लफाजियां हैं जो शहीद डिस्कस करते हैं, और हम भी इसको थोड़ा सा खोलेंगे और ये एक दो लाइनें पढ़ लें और वाइंड अप कर लेते हैं। बावजूद है कि इंसान की माहियत और हकीकत बारे में इतना बड़ा इख्तलाफ नजर मौजूद है, लेकिन एक और मामले के बारे में जो इस मसले से वाबस्ता है कोई इख्तलाफ नजर नहीं है। वो मामला ये है कि एक सिलसिले उमूर है जो मादे और मादियात की जिन्स से नहीं है, और उन्हें मानवियात का नाम दिया जा सकता है। ये उमूर ऐसी खसूसियत पर मबनी है जो इंसान को शख्सियत और कद्र कीमत बख्शती हैं, पर्सनैलिटी देती है। इंसान का इंसान होना इन्हीं उमूर की बदौलत है। अगर इंसान से ये खसूसियात ले ली जाएं तो इंसान और हैवान में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता। इंसान की इंसानियत इसकी जिस्मानी साख्त की बिना पर नहीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता जो शख्स एक सर और दो कान रखता हो, उसके नाखून चिपटे और कद सीधा हो, तो वो इंसान है, ख्वा कोई भी हो और कैसा ही क्यों ना हो। ये वही बात है जो साबी ने इन अल्फाज में कही है, तन आदमी शरीफ अस्त बेजान आदमियत, न हमें लिबास जीबास निशान, न हमिन लिबास जीबास निशान आदमियत, अगर आदमी बे चश्म चिमियान नक्श दीवार और मियान आदमियत। खूब एक फोटो भी बना ले तो वही बात हो गई। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह इनकमिंग में बात करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट जावियों से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और टॉपिक्स के अंदर, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सोसाइटीज में जिनमें हम रहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी सोशल पर्सनल हर किस्म की लाइफ और ये जो जो कुछ आप देख रहे हैं ये बेस करती है इस थ्योरी के ऊपर जो ह्यूमनिज्म थ्योरी कहा जाता है, और जो जो है कलीसा और चर्च की के बाद जो है यूरोप के अंदर जिसको जो है पेश किया गया, और उसी की बेस पर ये सोसाइटी इस वक्त कायम है। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे और थोड़ा तेजी से डिस्कस करेंगे ताकि ये किताब जल्दी खत्म हो जाए। 75 और 76 में हम इस वक्त हैं इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।